विषय पर आते हैं। यस्त्व विज्ञानवान भवति अयुक्ते न मनसा सदा तस्येन्द्रियान्यवश्यानि दुष्टाश्वाइव सारथे। पिछले बार हमने चर्चा की, ये शरीर एक रथ है, एक चेरियट है, एक कार है, गाड़ी है, और उसका जो मालिक है, जो पैसेंजर है, वो आत्मा है, और उसका जो सारथी है, ड्राइवर है, वो हमारी बुद्धि है, जो लगाम है, जो जिसको आपके नए गाड़ियों में जो ब्रेक है, पहले घोड़ों की गाड़ियों में लगाम होता था, वो मन है, और जो रथों की जो घोड़े हैं जिनसे गाड़ी चलती है, रथ चलता है, वो हमारी इंद्रियां हैं, आंख कान नाक वगैरह इंद्रियां हैं, ये हमने पढ़ा था। आज मंत्र कहता है, जो लोग अपने विवेक को प्रयोग नहीं करते, मतलब अच्छा ड्राइवर नहीं रखते हैं या खुद अच्छी ड्राइविंग नहीं सीखते हैं, जो अपने लगाम को ठीक से पकड़ना नहीं जानते हैं, मतलब अपना मन को ठीक से नहीं रखना जानते हैं, जो अपने बुद्धि को विकसित नहीं करते, उनके इंद्रियां जंगली घोड़ों की तरह इधर उधर भागते रहते हैं। दूसरा मंत्र साथ लेते हैं, दोनों का एक साथ चर्चा करेंगे। यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वाइव सारथे। जिसने अपने ड्राइवर को अच्छा बनाया या खुद अच्छी ड्राइविंग सीखा, मतलब अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को अच्छा बनाया और अपने लगाम को या ब्रेक को ठीक रखा है, अपने मन को ठीक रखा है, उसके घोड़े बिल्कुल अच्छे घोड़ों की तरह, ट्रेंड घोड़ों की तरह होते हैं, उनके इंद्रियां उन ट्रेंड घोड़ों की तरह होते हैं, जो शरीर को, रथ को सही रास्ते पर, सही जगह पर ले जाते हैं। ये दो चीजें हैं हमें समझनी है। भारत में ये एक बड़ा बड़ा पुराना सिंबोलिज्म है, एक प्रतीकात्मकता है, शरीर को गाड़ी के साथ कंपेयर करना, शरीर को रथ के साथ जोड़ना। शरीर रथ है, आत्मा मालिक है, इंद्रियां पशु है, जानवर है, घोड़े हैं। जानवरों का कोई असूल नहीं होता, कोई नीति नहीं, कोई नियम नहीं, कोई थ्योरी नहीं, कोई फिलॉसफी नहीं। उनको भूख लगता है और खाने लायक कुछ भी दिखता है, जो उनके खाना जैसा दिखे, वो खाना हो जरूरी नहीं है, खाना जैसा दिखे तो भी खा जाते हैं। तो उनको जो भी उनके शरीर का डिमांड होता है, वो उसी समय उसको करने की कोशिश करते हैं। वो कोई ना नीति समझते हैं, ना नियम मानते हैं। हमारी इंद्रियां ऐसी होती हैं, आपकी आंखें देखना चाहती है, बहुत कुछ देखना चाहती है, ऐसी चीजें भी देखना चाहती है जो आपका पोस्ट आपको अलाउ नहीं करता। आप बाप के नाते उन चीजों को देख नहीं सकते, आप किसी एडमिनिस्ट्रेटर के नाते देख नहीं सकते, आप किसी टीचर के नाते देख नहीं सकते, आप एक सिविलाइज्ड इंसान के नाते देख नहीं सकते, पर आंखें देखना चाहती है। आंखों का कोई असूल नहीं है। कभी कभी जंगल में पशु लड़ते रहते हैं, जब वो एक दूसरे के इंटरेस्ट पर कोई चोट करता है। घोड़ों का अपना इंटरेस्ट है, शेर का अपना इंटरेस्ट है, इसी तरह हमारी इंद्रियां भी आपस में लड़ती रहती हैं, पशुओं की तरह। उनका कोई असूल नहीं, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। आंखें कुछ देखना चाहता है पर शरीर साथ नहीं देता है। रात को अच्छी फिल्म आने वाली है पर दिन भर थके हैं, मन करता है, आंखें चाहता है मैं देखूं, शरीर साथ नहीं देता है। गाड़ी चलाते हुए जाते हैं, साइड में, रोड के साइड में कुछ ऐसा चीज है जो आपको देखने को बड़ा मन करता है, बार बार मुंह फेरते पर गाड़ी भी चलानी जरूरी है, तो आप द्वंद में पड़ जाते हैं। तो बार बार सामने देखते हैं, फिर इधर देखते हैं। आपको खाने को मन करता है पर आपकी बीमारी आपको इजाजत नहीं देता, शरीर आपको इजाजत नहीं देता। तो ऐसी सैकड़ों चीजों हैं, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, आंखें देखना चाहता है तो कान सुनना चाहता है, आपको भूख लग रहा है, आपको खाना के लिए जीभ ललचा रहा है, पर आपको कुछ घर में जल्दी भागना है क्योंकि कोई मैच आ रहा है जिसके लिए आप तड़प रहे हैं, आपके आंखें देखने के लिए परेशान है पर आपकी जीभ उस रसगुल्ले को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, आप किसी गेस्ट के घर के गए हैं, आप नहीं चाहते हैं कि बिना वो रसगुल्ला खाए मैं वापस घर जाऊं, पर घर जल्दी नहीं गए तो मैच भी छूट जाएगा, तो आंख और कानों में भी लड़ाइयां चलती है। फिर कौन जीतता है वो अलग बात है, जिस आदमी के अंदर जौन सा जानवर ज्यादा हावी होता है वही जीतता है, जंगल राज है। तो इंद्रियों का अपना जंगल है, समाज नहीं है, सोसाइटी नहीं, समाज तो वो है जहां कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, पशुओं का कोई रूल रेगुलेशन नहीं, इसीलिए वो समाज नहीं है, वो जंगल है। तो पशु जंगलों के जंगली होते हैं और हमारी इंद्रियां इसी तरह के जंगल होता है, और साथ में हमारा मन है जिसके अंदर इच्छा होती है कुछ देखने की, खाने की, पीने की, पर मन की मजबूरी है। मन में संस्कार भी होता है जो हमने जन्म जन्मांतरों से लिया है, मन में ज्ञान भी होता है जो समाज से हमने लिया है, मन में अहंकार भी होता है, ईगो होता है, तो वो जो इमोशन है जो हमारे मानसिक स्थिति उसमें भी झगड़े चलते हैं। ऐसा नहीं कि आंख कान आपस में लड़ते हैं, हमारी मन के अंदर भी रोज झगड़े चलते रहते हैं, संघर्ष चलता रहता है। आपको कुछ देखना है, आपका मन करता है कुछ खास चीजें देखने के लिए, पर आपका ईगो, आपका अहंकार आपको अलाउ नहीं करता। आप बाप होकर कैसे देखोगे बच्चों के सामने वो चीजें, आप बड़ा होकर के कैसे देखोगे छोटों के सामने। आपको कुछ मन करता है, आपको मन करता है मैं नाचूं, आपके हाथ पैर थिरकते हैं जब बाकी लोग नाचते हैं, पर समाज में जो आपकी प्रतिष्ठा है, जो आपका अहंकार है, मैं नाचूंगा तो लोग क्या कहेंगे, फिर मैं अपने आप को रोकता हूं, नाचता नहीं हूं। तो मेरा मन नाचने को चाहता है, पर मन का एक दूसरा हिस्सा है जो उसको रोकता है, जो अहंकार है। दूसरी तरफ है जो मेरी इच्छा है, वो नाचना चाहता है, मेरा अहंकार उसको रोकना चाहता है। मेरा मन करता है कि मैं कुछ भी करके करोड़पति बन जाऊं, पर मेरा संस्कार मुझे रोकता है, कुछ भी करके नहीं, अच्छा करके मैं कमा सकूं। तो मेरे अंदर खुद की लड़ाइयां चलती रहती है, मेरे मन में भी, मेरे इंद्रियों में भी। और अगर आप उस लड़ाई में फंस जाते हैं, आप उस लड़ाई में हिस्सा बन जाते हैं, तो आप एक पार्टनर बन जाते हैं, आप एक हिस्सेदार बन जाते हैं, आप लड़ाई का एक पार्ट बनते हैं, आप सल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। हमारी समस्या है कि हम इंद्रियों को रोकने की कोशिश करते हैं, आंखों को देखने से रोकने की, कानों को देखने की रोकने की। आंख देखना चाहता है और मैं उसको रोकता हूं, मतलब आंख से लड़ाई करता हूं, मन से लड़ाई करता हूं। लड़ाई में जो ताकतवर होता है ज्यादातर वही जीतता है। पिछली बार हमने चर्चा की, जब भी कोई प्रॉब्लम हो, सॉल्यूशन उस लेवल पर नहीं होता है, हमेशा उसके ऊपर लेवल पर होता है। आपको बुखार है, अगर डॉक्टर सिर्फ बुखार की गोलियां देता रहे तो वो डॉक्टर फिर सही डॉक्टर नहीं है, क्योंकि बुखार सिर्फ बुखार के कारण नहीं होता है, डॉक्टर को उसके दूसरे लेवल पर जाना पड़ता है। एक दो दिन आपको बुखार की गोलियां देता है, बुखार ठीक नहीं होता है, वो कहता है टेस्ट करो, आपके अंदर 50 प्रॉब्लम है जिनके कारण बुखार हो सकता है। आपको ब्लड प्रेशर है तो भी बुखार होगा, आपको शरीर में फोड़ा फूसी है तो भी बुखार होगा, आपको कैंसर है तो भी बुखार होगा, आपको टेंशन है तो भी बुखार होगा, आप डरे हुए हैं तो भी बुखार होगा, आपको और भी 50 बीमारियां हैं तो भी बुखार होगा। तो बुखार ठीक होगा जब आप उसके अगले लेवल पर पहुंचेंगे, इलाज करेंगे, आप उसके और सूक्ष्म लेवल पर जाकर इलाज करेंगे। बुखार की गोलियां महीने तक देते रहेंगे तो वो बुखार वाला आदमी वैसे ही मर जाएगा। इंद्रियों को रोकने के लिए, इंद्रियों को जो लोग कंट्रोल करते हैं वो ज्यादा व्यभिचारी बन जाते हैं, ज्यादा मिथ्याचारी, हिपोक्रेट बन जाते हैं। इंद्रियों को रोकने के लिए हमें उसके और सूक्ष्म स्तर पर जाना है। मंत्र कहता है जो अपने विवेकवान होता है, जो अपनी बुद्धि को विवेक को अच्छा बनाता है, वो घोड़े उसके अपने आप, उसकी इंद्रियां अपने आप ठीक हो जाती हैं। जैसे घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए अच्छे सारथी की जरूरत है, अच्छे ड्राइवर की जरूरत है। घोड़ों को मारने पिटने से नहीं चलेगा। घोड़ों के बारे में जो ड्राइवर अच्छी तरह जानता है, जो जो सारथी अच्छी तरह जानता है, ऐसे सारथी लाने की जरूरत है, या खुद सारथी बनना चाहें तो उस ट्रेनिंग लेने की जरूरत है कि घोड़ों का साइकोलॉजी क्या है, घोड़े किसमें मानते हैं। जब हम उस स्तर पर पहुंचते हैं तो जाकर हम इंद्रियों को रोक सकते हैं। इंद्रियों को रोका नहीं जा सकता। घोड़ों को, जंगली शेर को आप सीधे पकड़ करके सर्कस में खिला नहीं सकते। आपको महीनों वर्षों लग जाता है उस शेर को आपको ट्रेनिंग करने में। अगर आप अपनी इंद्रियों से लड़ते हैं रोकने के लिए, वो वैसा ही होता है जैसे मालिक नौकरों से लड़ता है। इंद्रियां हमारे नौकर होते हैं, गुलाम होते हैं, जिनसे हम काम लेते हैं। इंद्रियों को रोकने के लिए जब हम इंद्रियों से लड़ते हैं, नौकरों से लड़ना होता है। कोई भी समझदार मालिक नौकरों से लड़ा नहीं करता। जब आप अपने सबोर्डिनेट से, अपने नीचे काम करने वाले व्यक्ति से, अपने नौकरों से आप लड़ने लगते हैं, आप नौकर को यह एहसास कराते हैं कि आप मालिक नहीं है। अब जब आप लड़ेंगे तो दोनों बराबर है, कभी मालिक जीतेगा तो कभी नौकर जीतेगा। और नौकर जीत गया तो जिंदगी भर के लिए वो आपको मालिक बनने के लिए तैयार नहीं होगा। आप उस नौकर के साथ कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि नौकर अपनी मनमानी करेगा, क्योंकि वो आपको मालिक मानता नहीं है। तो जो बेवकूफ लोग होते हैं वो नौकरों से लड़ते हैं, जो समझदार मालिक है वो नौकरों को ऑर्डर देता है, आज्ञा देता है, मानो या तो नौकरी छोड़ो, या तो नौकर आपकी आज्ञा को मानेगा या नौकरी छोड़ के चला जाएगा। इंद्रियों के साथ यही है। आपकी बुद्धि इतनी तीव्र हो, आप अपने विवेक को इतने काम में लाए कि वो इंद्रियों को ऑर्डर दे, इंद्रियां विवेक के अनुसार चले, इंद्रियां अपने आप रुक जाएं। इंद्रियों से लड़ते रहेंगे तो इंद्रियों को जब भी पता चलेगा कि आप कमजोर है, एक बार इंद्रियों के नजर में आप कमजोर हो जाए तो कभी आप अपने आप को किसी भी चीजों से रोक नहीं सकते। इसी प्रसंग में मैं एक बड़ी जानकार की चीज बताना चाहता हूं। जब आप बच्चों को, हम अपने बच्चों को ऐसा कुछ ना बोलें जो हम कर नहीं सकते, ऐसा कोई आदेश ना दें जिसको हम मनवा नहीं सकते। अगर बच्चे को पता चला ये मां बाप तो बस ऐसे ही बोलते रहते हैं, कुछ करने धरने नहीं है, तो फिर वो कभी भी आपकी बात मानने वाले नहीं होंगे। तो ये मां बाप को, जो समझदार मां बाप है, वो इतना ही आदेश देते हैं जितना वो मनवा सकते हैं। एक छोटा बच्चा रो रहा है, आप उसे रोकने की कोशिश करते हैं, आप कहते मत रो, वो और जोर से रोता है। आप कहते मत रो बेटे, वो और रोता है। आप समझाते हो रो मत बेटे, क्यों रो रहे, वो और जोर जोर से रोता है। आप क्या करोगे, आपको गुस्सा आता है, आप कहोगे मैं थप्पड़ मारूंगा, आप थप्पड़ मारेंगे और जोर से रोएगा। अब बच्चे को समझ में आ गया कि बाप बोलता रहेगा मत रो और मैं और रोता रहूंगा। अगर आप उसकी रोने को रोक नहीं सकते तो उसको ऑर्डर मत दे, क्योंकि बच्चे को ये एक साइकोलॉजिकल से जाता है कि मेरे बाप या मेरी मां मेरे को मनवा नहीं सकते। आप क्या कर सकते हो, आप कह सकते हो रूम से बाहर निकल जाओ। वो रूम से बाहर नहीं निकलेगा तो आप उसको उठा करके बाहर निकाल सकते हो। बच्चे को मैसेज जाता है बाप ने बोला रूम से बाहर निकाल निकाल निकलो, तो उसने निकाल के रहा। छोटी सी बात है पर बच्चे को यह मैसेज जाता है मेरा बाप जो बोलता है वो करता है। कभी कभी हम परेशान होते हैं, बच्चों के ऊपर बहुत कुछ थोपना चाहते हैं, बच्चे मानना नहीं चाहते हैं, हम चिढ़ते रहते हैं, डांटते रहते हैं, फटकारते रहते हैं, और वो हमारी एक आदत बन जाती है चिड़चिड़ा होने का, बच्चों की आदत हो जाती है ना सुनने का। ये नासमझी का लक्षण होता है, क्योंकि आप बच्चे को साथ लड़ते हो, और छोटे के साथ लड़ने का मतलब है आप भी उस लेवल पर आ जाते हो। हमेशा ध्यान रखिए, आप दोस्त किसी को भी बना सकते हैं, अपने से छोटों को, अपने से बड़ों को, अपने से बराबर को, किसी को भी, पर दुश्मन हमेशा बराबर वालों को या अपने से बड़ों को बनाना चाहिए। छोटों से कभी दुश्मनी नहीं करना चाहिए। अपने से नीच लोगों से दुश्मनी करने का मतलब आप उस लेवल पर आ जाते हो। जब आप एक अनपढ़ आदमी से दुश्मनी करते हो, वो आपको गालियां देता है, पहली बार आप गालियां नहीं दोगे, दूसरी बार वो गालियां देगा, अगर उसके साथ आपकी दुश्मनी बनी रही फिर आप भी गालियां दोगे। छोटा जो आपसे छोटा था वो बढ़ा नहीं, आप छोटा बनते गए। हमेशा दुश्मन चुन के दुश्मनी करना, छोटा हो तो दुश्मनी कतई नहीं करना, समझौता कर लेना बेटर है। इंद्रियों के साथ दुश्मनी करेंगे, इंद्रियां भारी पड़ेंगी, क्योंकि आप हमेशा इंद्रियों को मना नहीं सकते हो। वो उन बच्चों की तरह होते हैं जो एक बार पता लग जाए कि मां बाप कितने कमजोर है, वो उसके कैश करते हैं, उसका फायदा उठाते हैं। उनको पता है कि वो जब भी रोएंगे आप उनको समझाने की कोशिश करेंगे, वो नहीं मानेंगे, आप थप्पड़ मारेंगे, नहीं मानेंगे, फिर आप उनको घुमाने ले जाएंगे। तो जब भी उनको घूमने का मन करेगा वो रोएंगे। उनको पता है कि जब आप उनकी बात नहीं सुनते और वो जोर जोर से उनको टीवी देखने को मन करता है, आप उनको अलाउ नहीं करते, और जब आप बात कर रहे होते वो जोर जोर से शोर मचाते, वो कहते हैं बेटे टीवी देख लो बैठ के। फिर बच्चे को पता है जब भी मां बाप बात करें शोर मचाना, क्योंकि टीवी देखने को तभी मिलेगा। हमारी कमजोरी को बड़े आसानी से आंक लेते हैं। भाव है कि दुश्मनी करने से पहले आंक लेना वो आपसे बड़ा है या छोटा। बड़ा है तो जरूर दुश्मनी करना, बहुत सीखने को मिलेगा, बहुत पाने को मिलेगा, आपका लेवल कम से कम बढ़ जाएगा। छोटों से दुश्मनी करने से हम छोटे हो जाते हैं। तो हमारी इंद्रियां इसी तरह की होती है, इंद्रियां हमारे नौकर है, घोड़े हैं, आप उनसे दुश्मनी करके जीत नहीं सकते। उल्टा जब भी आप एक दो बार इंद्रियों को ऑर्डर दिया, इंद्रियों ने नहीं माना, और आपको आदत पड़ जाएगा, इंद्रियों को आदत पड़ जाएगा, बिल्कुल बच्चों की तरह। थोड़ी थोड़ी एग्जाम्पल लीजिए, आपने नए साल में आप लेते हैं भाई संकल्प लेते हैं, इस साल में ये करूंगा, इस साल से इस साल में गुस्सा कम करूंगा, इस साल में सिगरेट पीना छोड़ दूंगा, इस साल से मैं तो सुबह जरूर मॉर्निंग वॉक में एक घंटा जरूर जाऊंगा। आपने 7-8 दिन किया फिर छोड़ दिया। अगले साल आया, आपने एक दूसरा ओथ लिया कि इस बार मैं जरूर मैं एक घंटा जरूर पढ़ाई करूंगा, 2 दिन पढ़े फिर छोड़ दिया। आपको पता नहीं चला आपकी इंद्रियां कितने आपको कमजोर कर चुके हैं। अब आप एक ऐसे पर्सनालिटी बन चुके हैं, अब कुछ भी कसम खाइए आप यकीन मानिए कुछ नहीं कर सकते। आप परेशान होंगे क्यों मैं नहीं कर पाता हूं, कोई दूसरा आपको नहीं रोकता। आपने अपने इंद्रियों को इतना हावी बना दिया अपने सामने, अपने नजर में आप इतने गिर गए, वो इंफीरियरिटी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दूसरों के लिए नहीं, अपने इंद्रियों के सामने आपके मन की इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इतना हो गया कि आप कुछ करने लायक बचे ही नहीं। आपको यह एहसास होने लगा मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता, मैं सुबह उठ नहीं सकता, मैं सिगरेट नहीं छोड़ सकता, मैं शराब नहीं छोड़ सकता, मैं गालियां देना बंद नहीं कर सकता, छोटी छोटी चीजें, मैं शॉपिंग ज्यादा करना कम नहीं कर सकता। ये महिलाओं के लिए ज्यादा होता है। चाहकर भी नहीं हो पाता, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि ये बुरी बात है, इतनी ज्यादा शॉपिंग अच्छी नहीं, घर में गार्बेज के तरह कपड़े भरे पड़े हैं, पर जब मन करता है उठ के चला जाता हूं, मैं समझता हूं बेकार है, पैसे बेकार जा रहे हैं, पर क्या करें, गाड़ी पकड़ी और पहुंच गए, देखा नहीं कि खरीद लिया और घर में फेंक दिया, 5 साल में एक बार भी पहनने को मौका नहीं मिलता है, कभी कभी तो जिंदगी भर नहीं पहनते, पता है बुरा है, पर हाथ नहीं मानता, मन नहीं मानता। मतलब मन हाथ कौन है, आपके नौकर थे, पर आज आप हम नौकर के गुलाम हो चुके हैं, हम अपने से हार चुके हैं। इसलिए मंत्र कहता है, इसका कारण क्या है, हम लड़ते हैं छोटे लेवल पर, जैसे ये खास करके भारत में ये जो करप्शन के खिलाफ जो लड़ाइयां होती है, वो पकड़े कौन जाते हैं, चपरासी, क्लर्क, हेड क्लर्क, इसीलिए करप्शन बढ़ता है। आप छोटे लेवल पर लड़ते हो, 2-4 प्राइम मिनिस्टर जेल जाएंगे, 5 साल में खत्म करप्शन। शरीर के अंदर जो बड़ा है वह है बुद्धि, विवेक। विवेक मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डिटर्मिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, अलग करना, ये अच्छा ये बुरा, और जो अच्छा या बुरा आपने अलग कर दिया उस पर टिके रहना, डिटर्मिनेट करते रहना, ये बुद्धि का काम है। जितनी बुद्धि अधिक तीव्र होगी, जितना आपका बुद्धि, आपका विवेक विकसित होगा, उतना आपकी संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति मजबूत होगी। इच्छा शक्ति मन का काम है, मन लगाम है, और जब इच्छा शक्ति मजबूत होगी, विल पावर मजबूत होगी, तो आपके घोड़े, आपकी इंद्रियां अपने आप कब्जे में रहेगी। घोड़े कब्जे में रहेंगी जब लगाम ठीक हो, इंद्रियां कंट्रोल में रहेगी जब आपकी इच्छा शक्ति प्रबल हो, इच्छा शक्ति तभी प्रबल होगी जब आपकी बुद्धि निश्चित करे कि चोरी करना बुरी है तो बुरी है, तो आपकी इच्छा शक्ति भी प्रबल होगी चोरी नहीं करनी, और अगर इच्छा शक्ति प्रबल, लगाम प्रबल हुआ तो करोड़ों रुपए भी चोरी करने को मौका मिले कोई ना जाने तो भी हाथ जाएगा नहीं। अगर बुद्धि के स्तर पर है कोई फर्क नहीं पड़ता, अंधेरा है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी बहुत तो कभी कभी कर लेना चलता है, तो इसका मतलब विवेक कमजोर है, तो विल पावर कमजोर होगा, लगाम ढीला होगा, तो घोड़े फिर मनमानी करेंगे, और एक दो बार घोड़े मनमानी करने लगे फिर घोड़ों की ही चलेगी, हमारी कभी नहीं चलेगी। यही मंत्र कहना चाहता है, जो विवेक शक्ति को मजबूत करते हैं वो उनकी इंद्रियां सीधे साधे घोड़ों की तरह उनके कब्जे में रहते हैं, जिनकी बुद्धि या विवेक मजबूत नहीं है उनके जंगली घोड़ों की तरह उनके साथ होते रहते हैं। अगला देखते हैं, यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्क सदा शुचि सतो तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते। जो समनस्क है, मन को नियंत्रण करना जानता है, विवेकवान है, जिसकी विवेक शक्ति है, शुचि जो पवित्र है, जिसका मन निर्मल है, साफ है, लोभ मोह क्रोध वगैरह से दूर है, वो तत्पदम आप्नोति, उस परम पद को प्राप्त करता है, जिसको पाने पर और कुछ बचता नहीं है। इससे पहले एक मंत्र और रह गया, जो विवेकवान नहीं है, जिसका मन स्थिर नहीं है, जो शुचि नहीं है, पवित्र नहीं है। पवित्र का मतलब गंगा में नहाने वाली पवित्रता नहीं, प्योरिटी, मन में लालच, गुस्सा, तिकड़म्बाजी, दूसरों को नीचा दिखाने की ईर्ष्या, जलेसी, मच्छरता वगैरह वगैरह, ये सब है अपने आप को अपवित्र करने वाला। जिसके अंदर ये सब चीजें हैं वो बार बार दुनिया में फंसा रहता है, दुनिया के बंधन में पड़ा रहता है। एक दो चीजें समझनी है। एक आदमी जेल में है, पर सोया हुआ जेल में है, उसके होश नहीं है, आप उसको जेल में डाले हो। कोई भी आदमी जेल जाना नहीं चाहता, और जब भी जेल जाता है वो कोशिश करता है कि मैं बाहर दुनिया में आऊं। पर एक सोए हुए आदमी को आप जेल में डालिए, वो जेल से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि वो जेल पर है कि बाहर है, वो सोया हुआ है। जेल से बाहर निकलने के लिए पहला शर्त है कि मैं जगा हुआ हूं और मुझे पता चले कि मैं जेल में हूं, नहीं तो मैं जेल में ही पड़ा रहूंगा या बाहर पड़ा रहूंगा, दोनों परिस्थिति में मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब मुझे सुख दुख का, दुनिया का होश होता है, जब मैं कॉन्शियस होता हूं, जब मेरे अंदर वो अवेयरनेस है क्या अच्छा या क्या बुरा, तभी मैं बुराई से अच्छाई की ओर आ सकता हूं। जब मेरे अंदर कोई इस तरह की अवेयरनेस ही नहीं है, कोई जागृति नहीं है, जब मुझे ये नहीं पता क्या अच्छा क्या बुरा, तो फिर मैं अच्छा क्या बुरा क्या कहां जाऊंगा। मैं बुरे में भी खुश हूं, अच्छा में भी खुश हूं, खुश भी नहीं है। सोया हुआ आदमी को ना खुश होता है, दुख होता है, वो लाइफ खींचता है, जिंदगी खींचती रहती है, कुछ होता नहीं है उसमें। इसीलिए हम लोग जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हैं। हमें पैदा होना पड़ता है, मरना पड़ता है, कोई आदमी मरना नहीं चाहता है, और जीते जी भी किसी को दुख मंजूर नहीं है, हमें किसी तरह की कोई तकलीफ मंजूर नहीं है, परेशानी मंजूर नहीं, पर उसके बावजूद भी उसके लिए जो उपाय है, ये दुख ना मिले उसके लिए जो उपाय है, उसमें भी कोई हमें इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि हम जो दुनियादारी में फंसे हुए हैं, जहां दुख सुख अच्छा बुरा दोनों है, हम बेहोशी के साथ जिंदा रहते हैं। बहुत सारे लोगों को अगर आप ज्ञान की बातें करो, वो बड़ा नाराज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ये सब क्या, ये तो बुढ़ापा में काम आने वाली बातें हैं। बुढ़ापा में क्यों काम आने वाली बातें हैं? कुछ सुख दुख के लिए नहीं, टाइम पास के लिए। तब हमारे पास काम नहीं होगा, बेटे बहू नहीं होंगे, तो हमारा टाइम वैसे ही नहीं बीतेगा, तब ये सब ठीक है। अभी क्या जरूरत है? अभी अगर जो मुझे दुख हो रहा है, ठीक है, शुअर को मार्वल के घर में ले आएंगे। एक शुअर जो यहां का शुअर तो बड़े साफ सुथरे दिखते हैं, तो भारत में वो ज्यादातर गंदे नाले में होते हैं, और अब वो जब भी उनको मौका मिलता है वो लेट जाते हैं। उनको आप पकड़ के किसी बढ़िया सा एसी वाले घर में बिल्कुल मार्वल फ्लॉश उसमें रखेंगे, तो भी जरा रोता रहेगा, उसमें मजा उसने चख लिया है। हम एक तरह के अपने अंदर एक एडिक्शन, एक नशा क्रिएट कर चुके हैं। जैसे बार बार भी मैं पहले भी कहा है कि हम दुखों में रहते हुए भी उस दुखों का मजा, जैसे खुजली आने पर जब आप खुजली करते हैं ना, तभी मजा आता है। तो खुजली जितनी ज्यादा करेंगे उतना मजा आता है, वो बाद में रोते रहेंगे अलग बात है, खुजली ना करें तो तड़प जाते हैं। हमारी जिंदगी इसी तरह की है, हम उस खुजली में मजा ढूंढते हैं। डॉक्टर कितना भी मना करे खुजली मत करो, पर हम करते हैं क्योंकि उसमें मजा आता है। ड्रग लेने वाले को ड्रग में मजा आता है। हम इस तरह के दुनियाई दुखों में मजा लेना सीख चुके हैं। ये मजा नहीं है, ये एक बेहोशी है। और उपनिषद आपको कहता है जब आप बेहोशी से ऊपर उठोगे, होश में आओगे, तो आपको पता चलेगा कि आप जेल में हो। जब आपको पता चलेगा कि आप जेल में हो, तभी आप कोशिश करोगे कि मैं जेल से बाहर आऊं। उसके लिए जरूरी क्या है कि आपकी बुद्धि विकसित हो, आप सही और गलत को समझना सीख पाओ, सुख और दुखों में फर्क करना जान पाओ। जिस दिन ये हम कर पाएंगे, तभी हम इस संसार के चक्र से बाहर निकल पाएंगे। इसीलिए जिसका मन पवित्र है, और ये सब क्यों होता है, क्योंकि जब हम लोभ मोह में फंसे रहते हैं तभी हमें यह मजा आता है। और जब हम इससे ऊपर उठेंगे, हमारी विवेक शक्ति तीव्र होगी, मन पवित्र होगा, तभी हम उस परम पद को प्राप्त करेंगे। जिसको पाकर हम दोबारा नहीं आते, वो परम पद क्या है, अगली बार चर्चा करेंगे। आप लोगों ने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।